फिकवाया और श्रद्धा नहीं टूटी है। वो कान बबराने से अटकल मटकल वाला श्रद्धा के जगत में अभी गया ही नहीं। जय श्री कृष्ण। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयते इंद्रियः। श्रद्धा हो साधन भजन में तत्परता हो। आपकी गुरु में या भगवान में श्रद्धा है उसकी कसौटी कैसे हो कि भगवान ने या गुरु ने जो आदेश दिया है उस साधन में तुम्हारी तत्परता है कि नहीं। अगर तत्परता नहीं है तो आपकी भगवान में या गुरु में श्रद्धा नहीं। गुरु ने जो साधन दिया उसमें तुम्हारी तत्परता होनी चाहिए। गुरु ने दिया मंत्र, गुरु ने दिया ध्यान की विधि, उसमें आप तत्पर नहीं है तो समझो गुरु में श्रद्धा का आपका अभाव है। तत्परता हो और इंद्रिय संयम हो, शिष्य का बेड़ा पार। मेरे तो बहुत श्रद्धा है मुख्य, मेरे को तो रोज दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ती। आपका रोज दर्शन करते। अच्छा, मैंने माला दिया था जप करते हो कि आज तो घर भूल के आया हूं, आज जप नहीं किया है। क्या खाक तूने दर्शन किया? माथा माला कान जपी दिया, कान जपी नहीं, लफड़ा दुखी परेशान, जाओ मरो, संसार भट्ठी में सेका। श्री राम। तो श्रद्धा के साथ साधन में तत्परता होनी चाहिए। साधन भजन छूटा और श्रद्धा छूटी तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां से 10 साल पहले चले थे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयते इंद्रियः। तत्परता और इंद्रिय संयम, श्रद्धा तत्परता और इंद्रिय संयम, बेड़ा पार हो जाए। महाराज प्रह्लाद को जब राज मिल गया, इंद्रियों को छूट छाट दी, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण रजोगुण बढ़ गया, अब वो श्रद्धा की सात्विकता से नीचे उतर आया और बहकाने वाले मिल गए। बोले ऐसे तो मैं विष्णु को ठीक करना तो चाहता हूं, लेकिन अब उसको तो वहीं उठा दी पति। बोले क्या है, आवाहन करो, पहले तो तेरे पास कुछ था नहीं, तू अनाथ था तो उसका सहारा ले लिया, अब तो तू राजा बन गया, इतनी फौज तेरे पास है, हिम्मत रख। अपने शास्त्रों में तो लिखा है निर्भय बनो, वो निर्भय जिन्होंने बनवाया है उन्हीं के साथ वो निर्भय तब फाइटिंग के लिए तैयार हो रही। ऐसे लोग बड़े अभागे होते हैं। ऐसे एक महिला थी जो सब कुछ छोड़कर घाट वाले बाबा के चरणों में पहुंच गई थी। दिल्ली में वो शिक्षिका थी, आचार्य थी, उसका नाम था पुष्पा बहन। उसने हरिद्वार में अपना मकान खरीदा क्योंकि गुरु महाराज के रोज दर्शन करना है। ऐसे ज्ञानी के दर्शन सारे तीर्थों का फल, सारे यज्ञों का फल, सारे तपों का फल सहज में मिल जाए, ऐसे ज्ञानवान को के दर्शन छोड़ के मैं दिल्ली में कब तक रहूंगी। मकान ले लिया, धीरे धीरे वो दिल्ली में से कुछ छुट्टियां लेकर आती थी रहती थी, और रिटायरमेंट जल्दी लेना था उसे। मैंने एक बार देखा कि वो खट्टी आम होती ना, कैरी, काची कैरी, खट्टे आम के पकोड़े बना के आई। घाट वाला बाबा को बोलते, स्वामी जी लो, मैंने बड़े मेहनत करके पकोड़े बनाए आपके लिए, खाओ। उन्होंने कहा मैंने अभी दूध पिया है, दूध के ऊपर पकोड़े नहीं खाए जाते। बोले मैंने मेहनत करके बनाए उसका क्या, ये श्रद्धा है? श्रद्धे का चाहे मर्जी हो न हो, लेकिन तुम जैसा चाहो ऐसा श्रद्धे करे तो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम्हारी नालायकी है? आपड़े धार्यू भगवान थी कराइए तो शु भगवान में आपड़ी श्रद्धा छे के भगवान में आपड़े उपयोग करिए छे? हम भगवान के उपयोग में आ जाएं, भगवान हमारे उपयोग में, हम भगवान को अपने उपयोग में क्यों लाएं? तो हमारा अहम और है, भगवान की कीमत हमारे तुच्छ अहम से, हमारे तुच्छ व्यवहार से, हमारी तुच्छ मेहनत से क्या भगवान, भगवान की विशेषता, भगवान की माता कम है? स्वामी जी मैं तो आपको खिला के छोड़ूंगी, कृपा करके लो, ये देखो कितने गर्म गर्म। बोले भाई अब जा, मैं सुन रहा था, देख रहा था तमाशा। बोले नहीं, मैं तो आज आपको खिला के छोड़ूंगी, आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अरे जा, दुष्ट कहीं की आग्रह करती है, दुराग्रह, चल नहीं खाते। बोले नहीं स्वामी जी, खाना पड़ेगा। बोले एक बार तेरे को इतना समझा था, तेरे को कुछ डर नहीं है? बोले आप ही ने तो बताया निर्भय बनो, मैं नहीं डरती हूं, तुम कितना भी डांटो मैं तो नहीं डरूंगी, वैसी की वैसी नकटी रहूंगी। अरे गुरु महाराज संकेत कर रहे हैं उसका तुझे ख्याल नहीं है, वो तेरी निर्भयता है कि नकटापन है? गुरु महाराज संकेत करें और उसका तुझे ख्याल नहीं है तो तू अपने निर्भय हो रहा है? नहीं, ये नकटापन है महाराज। उसने नहीं हटी नहीं। अब जब एक बार दो बार कहने से आदमी नहीं मानता है तो स्वाभाविक है उसको कड़क शब्द कहने पर, अरे चल जा दुष्ट कहीं के, बोले कुछ आप कुछ भी कहो मैं नहीं डरूंगी। नहीं डरी तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते चली नहीं और मकान बकान बेच के वही दिल्ली में टकरा रही है बुढ़िया। जय श्री कृष्ण। धीरे 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 फिर दिशा बदल गई। अब मकान बकान बेच के फिर वो दिल्ली में किसी बेटी के घर रह रही है। हम बुढ़ी हो गई, कभी कभी आती है हरिद्वार। मैं बोलता हूँ कैसा, सौ सौ आंसू रोना है। श्री राम। रुपया चला गया तो बड़ी बात नहीं है, कपड़े चले गए थोड़े बहुत कम हो गए तो बड़ी बात नहीं है महाराज, मकान और दुकान थोड़ा कम हो गया तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जीवन में जीवनदाता के रास्ते का जो श्रद्धा है वो चली गई तो समझो उसका सर्वनाश हो गया, वो कंगाल हो गया। जैसे जीव में जान रहे तन में प्राण रहे, तेरी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे। अब देखना प्रहलाद कहां गिर रहा है बेचारा। बोले आप अगर कहते हैं तो फिर मैं विष्णु को आवाहन कर दूं, ऐसे तो इतनी सेना है, वैसे तो मैं उनको ठीक कर सकता हूं, पहले तो अकेला था, ये बात ठीक है, आप सच कह रहे हो। सुनते 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 विरोधी बातों का भी सत्यत्व हो जाता है और श्रद्धा कम होती है। महाराज सेना को हुक्म कर दिया यज्ञ याग तप जप नहीं होना चाहिए, हमारा पिता जो कहता था वही ठीक था, श्रद्धा होती है तब सही बात। जय जय होम होम होम। तामसी श्रद्धा और राजसी श्रद्धा फरियाद करती और थोड़ा सा हिलाया पीठ दे देती। महाराज प्रहलाद बोलता है कि चलो ठीक है, विष्णु विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं बच्चा था ना, भोला था ना, वो मुए कुंभार का है, वो सब देखा ना, तभी से मेरी बुद्धि बिगड़ी थी। ले गए थे तेरे को जीव में से ब्रह्म बनाने के लिए, लेकिन अब तू ब्रह्म के बजे क्या बने तेरी मर्जी की बात है, ले जाने वाले का कसूर नहीं, आने वाले का कसूर नहीं, लेकिन रजोगुण तमोगुण आ जाता है ना तो आदमी को परेशान कर देता है। श्री राम। इसलिए कृपा करके सत्व गुण बढ़ाया जाए, साधन भजन को नहीं छोड़े तत्परता। खैर प्रहलाद कहता है खोज तैयार करो, विष्णु को आवाहन किया भगवान विष्णु भक्त वत्सल। उनको पता चला कि प्रहलाद सात्विक श्रद्धा छोड़कर आ गया है चक्कर में, और प्रहलाद ने मेरा आवाहन किया, मेरे साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। अरे जो पर्वतों से गिराने पर भी मेरा नाम और मेरा स्मरण नहीं छोड़ता था, दरिया में फेंकवाने पर भी जो मेरे सहारे के सिवा और किसी के सहारे को सच्चा नहीं मानता था, और लोगों के तपे हुए थंभे को आलिंगन करते समय भी मेरे सिवाय जिसकी नजर में और कोई सार नहीं था, ऐसा प्रहलाद सतबुद्धि को सात्विकता को त्याग कर कुमति का आश्रय लिया है। भगवान और गुरु और बात सहन कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा पतन उनको रुचता नहीं, उनसे सहन नहीं होता, इसीलिए तुमको ठपका दे दे के भी सावधान कर देते हैं। हुशु करो, ये बात ने 10 बार कहीने भी तुमने सावधान कर। जय श्री कृष्ण। उनके आटला लोगों ने बच्चे थे क्यों तुमने एकांत मा के, हाँ राजसी श्रद्धा छे तामसी श्रद्धा छे। जय जय। आपने तो के छेटा छेटा रहू, आपने तो जेम सत्संग गया सत्संग आबड़ी जता रहू, हवे तो बाबा कड़क थी गया थे, एटले आपने के नजीक नी सेवा नहीं, आपने तो दूर नी सेवा करो। तो महाराज आप अपने अहम को बचाने के लिए ईश्वर का त्याग करने को राजी हो गए, लेकिन अहम का त्याग नहीं करते। आपको समझो डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, या कुछ सीख मिल कल्याण के लिए कुछ भी आपसे व्यवहार होगा तो आपके अहम को ही डांट पड़ेगी। आपके आत्मा को तो गुरुजी डांट नहीं सकते, गुरुजी डांटना भी नहीं चाहते, आत्मा को तो कोई आज तक डांट नहीं सका, डांटेंगे तो अहम को डांटेंगे। जय श्री कृष्ण। जो कुछ टकोरा पड़ता है या गड़ाई होती है तो अहम की होती है, तो आप अहम को संभालने के लिए भगवान को त्याग करना चाहते, भगवान छूट जाए तो छूट जाए, गुरु महाराज छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये अहम मेरा न छूटे। आप कितने अहम के भगत हैं, जय श्री कृष्ण कही दो बद्धा। नरसिंह मेहता कहते भोय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, इतलू करता जो हरि भजे तो करी नाखू निहार। भूख ते रखा जमीन ते जमीन पे पड़े रहे, भोय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, दे दे देज करू, अने तो पण जो श्रद्धा टकी रहे समझी गए क्या निहाल हो गया, फिर निहाल हो गया। जैसी जी में जान रहे तन में प्राण रहे तैसी प्रीत संधि दोरी तो पासे सुरंदी रहे। अरे क्या आरती पिछले भगवान भगवान क्या है, दिखावे कि भगवान 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 क्या दया करते हैं। 15 साल से भगवान का भजन करता हूं और बेटे की शादी नहीं होती, क्या भगवान भगवान, तो तू बेटे की शादी का भगत हुआ भगवान का भगत नहीं हुआ। और लगता सबको है कि मेरी श्रद्धा है, और श्रद्धा एक अद्भुत चिगम है, 2% होता है तभी भी श्रद्धा लगती है, 5 लगता है तो भी श्रद्धा है, 25 होता है तभी भी श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा जब 100 डिग्री तक नहीं पहुंचती ना तब तक श्रद्धे का साक्षात्कार नहीं होता। पानी जब 100 डिग्री तक नहीं पहुंचता तब तक बाष्पीभूत नहीं होता है, तो कभी पानी 50 डिग्री पे गया, फिर 40 पर आया, फिर 60 पे गया, फिर 35 पे आया, फिर 45 पे गया, लगता है कि श्रद्धा है श्रद्धा है। जिसको अपने में मेरे में बहुत श्रद्धा है ऐसा लगता नहीं, तो श्रद्धा से जब दूर होता ना तब लगता कि मेरे में बहुत श्रद्धा है, मेरे में दोष है ऐसा दिखता ना तो दोष से थोड़ा दूर होगा तभी दोष दिखेगा, ऐसे ही मेरे में ये गुण है वो गुण है ये दिख रहा है ना, तो तुम गुणों से जब थोड़े दूर होते हो ना, जब गुण नहीं होते तभी लगता कि गुण है। आंख में काजल होता है ना तो नहीं दिखता कि आंख को काजल, आंख से दूर होता है तब काजल दिखता है, ऐसे ही श्रद्धा से थोड़ा आदमी दूर होता है ना तब लगता कि मेरे में श्रद्धा है। जय जय, अपने में श्रद्धा दिखती है ना तो समझ लेना कि श्रद्धा अभी परसेंटेज कम है उसीलिए दिख रही, अपने में गुण दिख रहा है ना तो समझ लो गुणों से कुछ हम और दूर ही है, जितने अपने में गुण की तत्परता होनी चाहिए उतने नहीं है, सद्गुणों के साथ एकम एकता नहीं है। लोहे में अग्नि दिख रही है, लोहे को तो कुछ हिस्सा लोहे का बाकी है उसलिए उसमें अग्नि दिख रही है, जब पूरी अग्नि हो जाती है तो लोहे को दिखती नहीं कर दिखता नहीं कि मुझ में अग्नि है, वो तो अग्निमय हो जाता है। तो श्रद्धा वाला श्रद्धेमय हो जाएगा, उसका रीत भात स्वभाव उसके ज्ञान अपने आप फूटने, गुरु में आत्मज्ञानी गुरु में अथवा परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो तो ज्ञान अपने आप फूट निकलता है, उनके अनुभव जैसा अनुभव अपने आप होने लगता है, विचार अपने आप होने लगता है, भजन बढ़ जाता है ना तो आत्मविचार निष्ठा अपने आप प्रकट होने लगती। लेकिन हमारी श्रद्धा हमारा अहोभाव बट जाता है, कुछ वाहवाही करने वालों के पीछे, कुछ उनके पीछे, कुछ उनके पीछे। ओ एक भक्त ने कहा कि मेरे को तो मेरे साई 3 साल के बाद मिले हैं, मोरो मुंजा साई मुझे 30 साल का पो मिले, पुराने साई 3 साल के बाद मिले, साई तो वही के वही थे, 3 साल तुम्हारी वाहवा हो रही थी कथा कर रहे थे तो तुम्हारी श्रद्धा बट गई थी, तुम्हारी प्रीति बट गई थी, अब जरा थोड़ा कंट्रोल हुआ और थोड़ा साधन भजन हुआ तो फिर हुआ, साई तो वही के वही, मैं तो भाई वही का वही हूँ, 3 साल में खो नहीं गया था, मैं तो वही का वही था। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से हम भगवान के और ईश्वर के नजीक होते हैं और अपनी करनी से ही हम भगवान और ईश्वर से दूर अपने को महसूस करते हैं। कोक वक्त एवं लागे कि आप दूर थी गया बापू थी, अने बापू ने आम नजीक में हुई है तो लागे कि दूर थी गया, अने केटलीक वार होय कि ना ना अपने नजीक छे, तो नजीक तब लगता है जब आपका सात्विक श्रद्धा होती है अहोभाव होता है, और दूर तब लगता है जब आप अहम के गुलाम होते हैं। जय श्री कृष्ण। महाराज प्रहलाद को अब विष्णु दूर लग रहे हैं, सेना की तैयारी हो गई, विष्णु का आह्वान कर दो, साधु ब्राह्मणों को देखना आप शुकन है, साधु संत ये हमारे राज में नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब हो गया टेम्परेचर 100% यदा यदा ही धर्मस्य, एक युग में भगवान कई बार भी आ सकते हैं, और कई तो शास्त्रों में भगवान के प्रागट्यों का वर्णन है, और कुछ प्रागट्यों का तो वर्णन शास्त्र भी अंकित नहीं कर पाए, इतने भगवान के प्रागट्य हो गए होंगे। जय जय, छोटे मोटे प्रागट्य सब शास्त्रों ने नहीं अंकित किए, कर नहीं पाएंगे। जैसे किसी की जीवनी लिखी जाए तो सब प्रसंग थोड़ी लिखे जाते हैं, कोई जो याद रहे मुख्य रहे, वैसे ही ऐसे ही भगवान का प्रागट्य सब के सब हम लोग या शास्त्र लोग थोड़े समझ सकते हैं। भगवान की गति तो भगवान ही जाने। महाराज भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रह्लाद के पास आए। वो 24 अवतारों में नहीं है लेकिन है तो अवतार जयराम जी के, जैसे वरुण अवतार 24 अवतारों में नहीं है, वो 25वां माना जाता है, ऐसे ही 26वां मानो 27वां मानो, संख्या तुम बढ़ाओ न बढ़ाओ, गिनो न गिनो, लेकिन वो तो दयालु है और रक्षा करता है। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके लकड़ी टेकते टेकते हाथ कंपित हो रहे आए। दरबानी का ए ब्राह्मण दुरटो, बोले मैंने सुनाया कि प्रहलाद साधु ब्राह्मण और भगवान का बड़ा भक्त है, मैं प्रहलाद से मिलने आया। बोले वो प्रहलाद पहले ऐसा था बुद्धू, अभी प्रहलाद में अकल आ गई है, पटावाला में भी अकल आ गई। श्री राम, वो तो पहले ऐसे गिड़गिड़ाता भगवान भगवान करता, लेकिन अब प्रहलाद समझदार हो गया। और प्रहलाद विष्णु भगवान को आह्वान किए हैं, उनको भी ठीक करने वाले हैं। बोले अच्छा, उनको ठीक करने वाले हैं तो ठीक है, लेकिन वो खुद को भी ठीक करे। बोले खुद तो ठीक हो गया, तभी तो आज उनको ठीक करने की तैयारियां हो रही है। और युद्ध की तैयारियों में साधु ब्राह्मण का दर्शन अपशुकन है, बिल्कुल सच्ची बात। लड़ाई झगड़े की तैयारी और साधु दिख गए तो समझ लेना कि उतना फोर्स लड़ाई झगड़े का नहीं रहेगा। सच्चे साधु और ब्राह्मण जो संध्या करते, त्रिकाल संध्या करते, क्षमाशील है, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और साधु मिल गए तो महाराज लड़ाई झगड़े में अपशुकन समझना, फिर लड़ाई झगड़ा मत करना। जैसे बोले प्रहलाद आने नहीं देंगे, बोले आने नहीं देंगे तो कुछ भी हो मैं तो जाऊंगा, नहीं मैं ब्राह्मण मैं नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं जाने देगा तो वैसे ही मैं देरो थर थर आ रहा हूं, भूखा प्यासा हूं, यहीं बैठूंगा, तू धक्के मार के मुझे गिरा दे, मेरी मौत हो जाएगी, तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, जा फिर प्रहलाद तेरे को क्या छोड़ा था मैं भी देखता हूं। पठावाला ने देखा कि अब क्या करे, वो तो पगारदार है, पगारदार आदमी की बेवफाई और वफाई क्या भरोसा। उसने कहा अच्छा मैं जरा उधर खिसक जाता हूं और तुम नजर बचा के घुस जाओ। ऐसा नहीं होता क्या पठावालों की दुनिया में? ये उन लोग कैसा करते हैं ना साहब लोग, मैं मेरी बदली हो जाए तो मेरा ये हो जाता, थोड़ू पेला ना माते थोड़ू पेला ना माते, तुम्हारे जे करो करो पर मारी नौकरी ने अड़चन ना आवी जोईए, एटलू हाचवजो। जय श्री कृष्ण। महाराज पटावाला ने तो दे दिया मौका और भगवान गए, वो प्रहलाद के सामने थरथरा रहे। हे बोले ब्राह्मण कैसे घुस गया? बोले मैंने सुना है कि तूने विष्णु को ठीक करने का आयोजन किया है और उस विष्णु के मद को तोड़ने के लिए तूने जो आयोजन किया है उसमें मेरा भी साथ है, क्योंकि विष्णु एक ऐसा आदमी है कि जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया है। प्रहलाद ने कहा फिर इधर आओ ब्राह्मण, नजीक बैठो, बताओ क्या 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 क्या। बोले मेरा परदादा को मार दिया, मेरे दादा को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, मेरे पड़ोसियों को मार दिया, तेरे बाप को भी मार दिया उसने। बोले तभी तो मैं उसको ठीक करता हूं। तो बोले ये मेरे सब मर गए, उनके लिए भी उनको ठीक करो और तुम और हम मिलकर विष्णु की खबर लेंगे। बोले ब्राह्मण मेरे को पहले ऐसे ही था, मैं बुद्धू, जब शुक्राचार्य ने मेरे को समझाने तब मेरी आंख खुली है। भगवान बोलता धिक्कार है, भीतर से कहते धिक्कार है इस तेरी आंख खुलने को, वो आंख तेरी बंद होनी चाहिए। बोले हाँ तेरी आंख तो खुली है लेकिन अभी पूरी नहीं खुली। बोले ब्राह्मण अच्छा तुम बताओ। बोले मैं तो ये सोचता हूं कि तुम विष्णु से युद्ध करना चाहते हो तो बताओ विष्णु कहाँ है। बोले असली विष्णु तो सर्वत्र है और वास्तविक में वो विष्णु है। बोले जो सर्वत्र है तो वो वहां भी है कि हाँ, तो तुम्हारे हृदय में भी है तो हाँ, तो फिर उनको परास्त करने के बाद भी हृदय के विष्णु को तो मार नहीं सकेगा तू तो मालूम होता है जैसा मैं बेवकूफ गधा हूं ऐसा तू VIP कोटा का गधा है। बोले ब्राह्मण क्या बोलते? बोले हाँ सही बोलता हूं, जब बोलता है भगवान सर्वत्र है तो जो सर्वत्र है उससे तू लड़के कैसे जी सकता है, उससे लड़ने में सफल कैसे हो सकता है? सर्वत्र है उसको आप वश कैसे कर सकते, उसके वश होने में ही तुम्हारा कल्याण है, उसको वश तुम कैसे कर सकते? एक बुलबुला सागर को वश करने की कोशिश करे, नहीं बुलबुला सागर में मिटे यही उसको सागर को वश करना हुआ, वो स्वयं सागर हो जाए। ऐसे ही तू तो बेवकूफ है, कैसे के चक्कर में आ गए। मैं तो सोचता था तू अकलमंद होगा और मेरे माँ बाप उसने मारे तो उसका बदला लेगा, लेकिन तू तो अपने आप को विनाश करने का, फौज को विनाश कर रहा है। मालूम होता है जैसे मैं बेवकूफ हूं ऐसा तू बेवकूफों का सरदार है। प्रहलाद सोचता कि ब्राह्मण इतना पतला दुबला ऐसा और इतना बोलने में इसकी इतनी तेजस्विता। बोले तो फिर क्या विष्णु भगवान को मैं ठीक नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इतनी सेना उतनी सेना उतनी सेना। बोले वो सेना से ठीक नहीं होते, अपने को ठीक करने से वो ठीक हो जाते, क्योंकि वो तो सदा ही ठीक है, अपनी बेवकूफी होती तब बेठीक लगते हैं। देख तू ऐसा कर, मैं लकड़ी गाड़ता हूं जमीन में, अगर इस लकड़ी को तूने उखाड़ दिया तो मैं समझूंगा कि तू विष्णु के साथ एक क्षण के लिए टकरा सकता है। ऐसा करके ब्राह्मण रूपधारी भगवान आदि नारायण ने परम कृपा करके लकड़ी खोस दी। प्रहलाद उठा के, ब्राह्मण तुम क्या समझते हो, मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हूं, पहले भगवान का पुत्र था, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हूं, ये लकड़ी मेरे लिए खींचने को बोल रहे हो। ब्राह्मण ये तो तिनखा है हमारे आगे। ऐसा करके लकड़ी को झपेट के खींचने का सोचा, लकड़ी को झपेट पकड़ा, लेकिन महाराज लकड़ी हिले नहीं, दूसरा हाथ लगाया हिले नहीं। तो अब तो इज्जत का सवाल है, जैसे रावण झुका ना हनुमान का पैर उठाने को, हनुमान ने कहा मेरा पैर क्या पकड़ता है, जाके भगवान राम के पकड़ दो तेरा कल्याण हो जाएगा लंके। ऐसे ही लकड़ी को खींचने के लिए जमीन में से जो जमीन में खोस दी भगवान ने, ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि ने वो लकड़ी को जो खींचने का गया, तो महाराज झुकना तो पड़ा, थोड़ा प्राणायाम हो गया, थोड़ी विष्णु भगवान की कृपा हो गई, उसका रजोत्तम गुण बदला, सत्तो आया, कुछ भी हुआ, प्राण उत्थान हुआ कि कुछ भी हुआ, महाराज उसकी बुद्धि ने थोड़ा प्रकाश पा लिया कि अरे देखते देखते लकड़ी गाड़ी और इतना खींच रहा हूं निकल नहीं रही है, ये कोई ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं, ये कोई कुछ और कुछ है। यहां कह के बोला आप सच बताओ कौन हो। मैं क्या सच बताऊं, तू तू खोज ले तू कौन है सच बता दे। इतना विरोध करने के बाद भी, विरोधी भाव आने के बाद भी, जिन्होंने युद्ध करने के लिए सेना तैयार की है, ऐसे भगवान अपने प्यारे भक्त का कल्याण कैसा चाहते हैं कि पहला तू सच बता दे तू कौन है, तू अपने को खोज, मैं कौन हूं ये मत मेरे से पूछ, तू कौन है ये तू जान लेगा तब तुझे पता चल जाएगा कि मैं भी कौन हूं। जब तक तूने अपने को ठीक से नहीं जाना प्रहलाद, तब तक तू मुझको नहीं जान सकता मैं कौन हूं। इसीलिए तू कभी तो मेरे लिए मर मिटने को तैयार होता और कभी तू मेरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। प्रहलाद को प्रकाश हुआ कि मैं तो मर मिटने के लिए तो विष्णु भगवान के लिए मर मिटने को हुआ और उसी को मारने के, ब्राह्मण तुम कौन हो। बोले तू अपने को खोज तब मैं दिखूंगा मैं कौन हूं। प्रहलाद अहोभाव से भर गया और चरणों पे अपना सिर रख दिया कि हे भगवान आप ब्राह्मण के रूप में नारायण मुझे क्षमा करो माफ करो। तब भगवान ब्राह्मण के रूप में से भगवान आदि नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान बोलते प्रहलाद तू मुझे मारने से तू बचा रहा है मुझे, तू मुझे माफ कर ये सेना को जरा रोक दे, मैं तो बहुत डर रहा हूं। प्रहलाद कहता भगवान तू मुझे माफ कर, आप मुझे माफ कर दो। भगवान बोलते प्रहलाद तू मुझे माफ कर दे भाई, अपराधी तो मैं हूं तेरी नजरों में। प्रहलाद बोलता नहीं, मेरी बेवकूफी ही अपराध पैदा करती थी। जय जय भगवान आप मुझे क्षमा कर देना। बोले प्रहलाद तेरा कसूर नहीं है, जब श्रद्धा तामसी या राजसी करवट लेती ने तब श्रद्धे के प्रति ऐसे भाव आ जाता है। हे निदान औरों की क्या बात, जो भगवान के लिए मर मिट रहे हैं, पिता और पूरा राज्य विरोध कर रहा है, फिर भी भगवान विष्णु की भक्ति प्रहलाद ने नहीं छोड़ी। वही काम भंभे कान भंभेराने से प्रहलाद भगवान का विरोधी बन गया। देखो ये आदमी कैसा कैसा गिरता है, कब गिरता है। तो संसार से वैराग्य होना कठिन है, वैराग्य हो तो कर्म कांड में से आगे यात्रा करने की रुचि होना कठिन है, यात्रा करने की रुचि हुई तो यात्रा का मार्ग दिखाने वालों का मिलना कठिन है, और वो उपासना तक ही रुक गए, उपासना में से फिर ज्ञानी गुरुओं को खोज लेने की तीव्रता मिलना कठिन। ज्ञानी गुरु मिल गए तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन है, और श्रद्धा हो गई तभी भी तत्व ज्ञान के लिए तत्परता होना कठिन है। विष्णु भगवान में, भगवान विष्णु तो ज्ञानियों के शिरोमणि है, फिर भी भगवान विष्णु से इतना लाभ हुआ तत्व ज्ञान पाने की प्रहलाद ने कुछ सोची नहीं, उसलिए हिल गया। अगर तत्व ज्ञान पा लेता, साक्षात्कार कर लेता, तो एक शुक्र ने हजार शुक्र आके हिलाते तो नहीं हिलता। गुरुत्व आकर्षण के नियमों के पार जब तक चीज नहीं गई, तब तक चाहे कितनी भी ऊंची गई लेकिन फिर भी हवाओं के दाब से नीचे गिर सकती है। ऐसे ही आदमी वातावरण के और खान पान के और संस्कारों के दाब से फिर आदमी ऊपर नीचे होता रहता है। कोई कोई चीज जो है वो गुरुत्व आकर्षण नियमों के पार चली जाती है। ऐसे ही कोई कोई विरला माई का लाल जो है तत्वज्ञानी गुरु में तीव्र श्रद्धा करके और सतत साधन भजन की निगरानी रखते हुए संसार के आकर्षणों से, माया के बंधनों से पार होकर महेश्वर स्वरूप को पाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसों को नमस्कार है, ऐसों को धन्यवाद है। छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना हम सुन लेंगे। सौबरी ऋषि हिमालय की तलेटी में तपस्या करते थे। तपस्या करते करते वो वृद्ध हो गए। हिमालय की ठंडी सहने में उनको कठिनाई होती थी। वे सरजू के किनारे नदी में आकर एकाग्रता करते थे। तपस्व सर्वेशु एकाग्रता परम तपः। सौबरी ऋषि ने इतनी ऊंची एकाग्रता की यात्रा की कि महाराज उनके पास रिद्धियां सिद्धियां सत्संकल्प सामर्थ्य आदि सब आ गया। एक दिन किसी ललना ने वहां स्नान किया और मत्स्यों की कुछ काम चेष्टा देखकर वो परिवार के साथ टहलते हैं और आनंद करते हैं, ऐसा देखकर सौबरी ऋषि के मन में हुआ कि अपने भी संसार बसाए तो कैसा होगा। इस कथा से हमको समझना होगा कि भोग का उपयोग किया जा सकता है लेकिन भोग भोग कर कोई आदमी पूरा संतोष नहीं होता है। वस्तुओं का उपयोग करना और बात है लेकिन वस्तुओं के अधीन होकर जीवन का उपयोग कर देना, ये समझो भोगों के अधीन हम भोगे गए। सौबरी ऋषि ने शादी की इच्छा की और राजा मानधाता के पास गए। महाराज जैसे बृहस्पति इंद्र की दरबार में जाए और इंद्र उठ खड़े हो, ऐसे प्रतापशाली राजा सौबरी ऋषि के तप का प्रभाव जानते थे। वो प्रभावशाली राजा नतमस्तक होकर सौबरी ऋषि का आदर सत्कार करते। ये भारत की प्राचीन संस्कृति, राज्य सत्ता से धर्म सत्ता ने हमेशा ऊंचा आसन लिया है, क्योंकि ऊंचे में ऊंचा परब्रह्म परमात्मा है, धर्म सत्ता उससे संबंधित है। लोगों के जीवन के साथ राज्य सत्ता का संबंध है, लोगों की आध्यात्मिकता के साथ धर्म सत्ता का संबंध है। ये धर्म सत्ता और राज्य सत्ता मिलकर हमारा ऐहिक और परमार्थिक सुरक्षा करती है और प्रोग्रेस करती है, ये इनका कर्तव्य होता है। तो महाराज धर्म सत्ता का अग्रगण्य सम्राट जब पहुंचा है राज्य सत्ता के अग्रगण्य के पास तो मानधाता उठ खड़े हुए हैं। मानधाता ने कहा, मुनीश्वर आज मेरा ये दरबार पवित्र हुआ, मैं आपके चरणों में क्या भेंट रखूं, क्या सेवा करूं। सौबरी ऋषि ने कहा कि राजन तू इतना प्रभावशाली है, कीर्ति वाला है, तेरी 50 लड़कियां हैं और मुझे संसार मारे संसार मांडवानी इच्छा छे। जय श्री कृष्ण। जब तक पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता है तब तक कभी कौन सी इच्छा आ जाए, कभी कौन सी इच्छा आ जाए कहना मुश्किल है। मुझे संसार बसाने की इच्छा है और एक लड़की तू मुझे बिहा दे, कन्या दान कर। राजा ने देखा कि लंबी लंबी जटा है, आंखें अंदर चली गई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। अब इस बूढ़े बाबा जी को अपनी युवती लड़की राजकुमारी बिहा के दूं, ये कैसे हो सकता है, और इनकार करूं तो इनके अभिशाप से मेरा सर्वनाश भी हो सकता है। राजा सिर नीचे करके सोच विचार करता है। तब सौबरी ऋषि समझ गए कि राजन तू क्या सोच विचार में पड़ा है, मैं बूढ़ा सा लगता हूं उसलिए। बोले महाराज हमारे राज्य का कुल धर्म का ये परंपरा से नियम है कि कन्या जिसको पसंद करे वो ही कन्या का वर होता है जिसे वैजयंती माला पहरा दे। अंतपुर में आप चलिए और लड़की अगर आपको कोई पसंद करे तो मैं आपको कन्यादान दे सकता हूं। सौबरी समझ गए महाराज देवों को यक्षों को गंधर्वों को विद्याधरों को भी रूप धारण करना जो कठिन है वो उन्होंने अपने योग विद्या के बल से ऐसा तेजस्वी रूप धारण कर लिया कि 50 की 50 कन्याएं बोलती कि मैंने तो इनको पहले देखा, मैं इनको वरूंगी। वो बोलते नहीं, ये मेरा, ऐसे करके 50ों ने मन उनके चरणों में अर्पित कर दिया। कथा कहती है कि मानधाता अब क्या इनकार करे, 50 कन्याएं बिहा कर वर राजा को दे दी गई। उन 50 पत्नियों को लेकर सौवरी ऋषि सरजू के किनारे आए हैं और विश्वकर्मा को बुलाया है। 50 महलों की रचना हुई है और दिव्य महलों में दिव्य भोग भोगते भोगते कुछ समय पसार हुआ। वह मानधाता चिंतित है कि एक पति और 50 पत्नियां अब एक के साथ मिलता जुलता बात करता होगा तो दूसरी 49 बेटियां मेरी कितनी दुखी होगी। और संसार में पति पत्नी का जो संयुक्त कुटुंब का या जो कपल का सुख होता है वो मेरी बेटियों को नहीं मिलता होगा, मेरी बेटियां निशासे डालती होगी, मैंने राज बचाने के भय से बेटियों की जिंदगी बेच दी। ऐसा करते करते वो दिन दिन अंदर अंदर चिंतित होता जाता था। चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजो खाए, साईं बिचारा क्या करे कहां तक कथा सुनाए। चिंता बुरी बला होती है, चिता तो एक बार जलाती है लेकिन चिंता तो आदमी को बार बार जलाती। रोम का बादशाह सीजर उसके विरोधी बढ़ गए, साथियों ने कहा कि तुम जरा अंगरक्षक रखो नहीं तो तुम्हें कभी भी कोई मार सकता रास्ते में। बोले अंगरक्षक रखो और मरने का भय रखूंगा तो न जाने दिन में कितनी बार मरूंगा और जब मरने का होगा तो किसी भी निमित्त मर जाऊंगा, इसलिए मुझे ज्यादा व्यवस्था सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं जरा उस विधाता के नियम पर डिपेंड करके जीऊंगा, जब जैसे घटना घटनी होगी घट जाएगी। जो आदमी मौत से डरता है क्या वो अमर हो जाता है, वो भी मरता है, और जो मौत से नहीं डरता है वो भी मरता है, लेकिन जो मौत से ज्यादा डरता है वो तो रोज रोज मरता है और जो मौत से नहीं डरता है वो एक बार मरता है। जैसे कृष्ण का ही देव पड़े कृष्ण कन्हैया लाल। मानधाता चिंतित रहे, इतने में महाराज देव ऋषि नारद आए और नारद मानधाता की व्यथा को समझ गए थे। मानधाता को कहा कि चलो जरा अपने सरजू के किनारे घूम आए, सोबरी के पास जाते हैं, संत संत के नाते हम मिलेंगे और तुम अपनी बेटियों का हालचाल पूछ लेना, एक पंथ दो कार्य। नारद बड़े मनोवैज्ञानिक संत रहे, मनोविज्ञान के किताब तो अब छपे हैं लेकिन आध्यात्मिक यात्रा करने वाला ऑटोमेटिक मनोवैज्ञानिक का बाप हो जाता है, जैसे कृष्ण कहीं देव पड़े। महाराज नारद जी के साथ मानधाता गए और बच्ची के महल में प्रवेश हुआ तो बच्ची ने देखा कि पिता, वर्षों के बाद पिता को पुत्री देखती है तो कितना हृदय भर आता है। बेटी का हृदय भर आया, बाप बेटी मिले और कहां है जमाई राज कि पिताजी वो अभी अभी बाहर गए, देखो हमारा घर कितना सुंदर है, देखो हमारा पूजा का रूम कितना सुंदर है, ये ध्यान का खंड कैसा है। पिताजी अपने महल में तो ठीक है, विषय विलास की साधना सामग्री थी लेकिन इन्होंने ऐसे महल बनवाए कि जब संसार का भोग भोगना है तो उसका उपयोग करो और जब आत्मा का खजाना लेना है तो वहां भी डुबकी मारो। देखो आप अपने महल में भी पूजा का रूम बनवाना, ध्यान का खंड बनवाना। बेटी तू तो इतनी खुश रहती है लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी बेटियां दुखी थी, लेकिन ऐसा महल ऐसा ऐसी सुविधाएं। बोले ये तो योगी है, सिद्धियों के बल से सब कुछ सुलभ कर दिया है। पिताजी मैं बहुत बहुत खुशी हूं, ऐसी और कोई किसी राजा की लड़कियां ऐसी सुखी नहीं होंगी जैसी मैं सुखी हूं, लेकिन मुझे एक बड़ा भारी दुख है कि तुम्हारे जमाई जो है ना सदा मेरे महल में ही रहते हैं, कभी मेरा महल छोड़कर गए नहीं, आज न जाने क्यों अभी गए कोई पता नहीं। पिता के आंखों से आंसू टपके, नारद जी ने कहा धीरज रखो दूसरे महल में चलते हैं। दूसरे महल में गए तो महाराज वही दिव्य कथा, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे एक ही दुख है कि तुम्हारे जमाई मेरे महल में ही रहते हैं, अब भी दूसरी जगह गए, हर महल में गए और खबर मिली कि और तो सब ठीक है लेकिन तुम्हारे जमाई माना मेरे मिस्टर मेरे पास ही रहते तो मेरी 49 बहनों का क्या होता होगा। नारद ने समझाया कि सौवरी ने योग बल से मन शरीर की यात्रा करते कुंडलनी का पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथे चक्र को भेद कर वहां ऐसी स्थिति की कि एक रूप में से अनेक रूप हो गए। ऐसा श्री कृष्ण ने भी किया था और गर्गाचार्य का भी हुआ था और योगेश्वरों के जीवन में भी सुनाई पड़ता है, नरसिंह मेहता की शिष्या के जीवन में भी सुनाई पड़ता है, रतन बाई के जीवन में। ऐसी सारी शक्तियां सबके अंदर सुषुप्त में पड़ी है, लेकिन आज का मानवी बाहर इतना बहल गया कि उसको अंदर के खजाने का पता ही नहीं। खैर, नारद जी जब लौटे मानधाता को संतोष हुआ। समय बीतने के बाद सौबरी ऋषि ने कहा कि अरे मैंने ललना का स्नान देखा और मच्छों की क्रीड़ा देखकर मैंने संसार के सुख भोगने की इच्छा किया, लेकिन रिद्धि सिद्धियों के बल से जो मानधाता जैसे राजा को जो सुविधाएं नहीं है वो उससे भी बढ़िया सुविधाएं भोगने के बाद भी ऐ संसार तू पूरा सुख नहीं दे सका, ऐ संसार तू सब दुख नहीं मिटा सका, ऐ संसार तू संसारियों के लिए मुबारक हो, हमें तो हमारा राम रस पीने दे। जब सौबरी ऋषि संसार से पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए तो तुम और हम कौन से बगीचे की मूली है। संसार का औषध उपयोग करो और परमात्मा रस का पान करो, यही आज के दिन का पैगाम समझ लो। जय राम सिया राम। दो मिनट प्यार से हां अहो भाव से बद्धा करीशू। गौरांग चैतन्य महाप्रभु की निगाह पड़ी धोबी पर, धोबी वाइब्रेट हुआ और पूरा गांव वाइब्रेट हुआ, तो फिर आश्रम में रहने वाले तुम भी तो वाइब्रेट होगे ना दो मिनट के लिए। सिया राम राम गाएगा सिया राम राम
बड़ा।